लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि हम सब लोग सृष्टि की रक्षा के प्रति समर्पित युवाओं में आनंदित होते हुए सरल और पर्यावरण की दृष्टि से धारणीय जीवन शैली हेतु सही विकल्पों को चुनने का साहस प्राप्त करें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तुता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत ईश सेवक फादर कॉन्स्टेंट लेबन्स एवं छोटे नागपुर में कार्तिक कलीसिया के विकास पर चर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रोताओं, पिछले कार्यक्रम में हमने फादर लेबन्स के स्वस्थ होने की उम्मीद से भारत से विदाई एवं बेल्जियम की यात्रा के बारे सुना था। आज हम बेल्जियम में उनकी स्थिति के बारे सुनेंगे, जहां पीड़ा की स्थिति में उनका आध्यात्मिक जीवन अधिक मजबूत हो गया था। तो आइए आगे सुनते हैं। फादर लेबन्स अपने स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए यूरोप लौटे थे ताकि वे पुनः छोटा नागपुर लौट सकें। रांची, इटली और बेल्जियम में उन्हें प्रोत्साहन के बहुत कम शब्द मिले थे, किंतु वे आशा की छोटी किरण में बने रहे। उसे चुराने का साहस कोई नहीं कर रहा था। फादर लेबन्स बेल्जियम में उसी घर में आ गए थे जहां से वे भारत के लिए रवाना हुए थे। बेल्जियम के ड्रोंजेन में पहले माह उनकी शारीरिक स्थिति स्थिर रही, ना तो कोई सुधार हुआ और न ही स्थिति खराब हुई, किंतु उनका आध्यात्मिक जीवन, विश्वास का जीवन अधिक मजबूत और गहरा हो गया। छोटे नागपुर में अपनी सफलता का श्रेय उन्होंने हमेशा ईश्वर की कृपा और आशीष को दी। ईश्वर की पितृत्व पर भरोसा रखकर उन्होंने अपना सब कुछ ईश्वर के कार्यों के लिए समर्पित कर दिया। वे एक अच्छे सेवक थे। अपने जीवन के अंतिम दिनों में प्रभु ने उन्हें एहसास दिलाया और स्वीकार कराया कि वे सुसमाचार के एक अयोग्य सेवक मात्र थे। ईश्वर चाहते थे कि उनकी पौत्र इच्छा के लिए वे अपना संपूर्ण समर्पित करें। फादर लेबन्स इस समय एक नई चीज से संघर्ष कर रहे थे जो उनके व्यस्त मिशनरी जीवन के संघर्ष से भिन्न थी। इस बीच भारत और छोटे नागपुर के प्रति उनकी रुचि कभी कम नहीं हुई। वे भारत की ओर चुंबक की तरह आकर्षित थे। रांची छोड़ने से पहले उनकी एक ख्वाहिश थी मनरेसा हाउस में डेरा के निकट एक कुआं खोदना। ड्रोंजेन में रहते हुए उन्होंने उसके लिए पैसे जमा किए। जून 1893 में उन्हें जानकारी मिली कि 40 फीट गहरा कुआं तैयार हो चुका है। वे मिशन से संबंधित किसी तरह के पत्र या किताब पढ़ने के लिए बेताब रहते थे। वे अपने मित्रों से भारत से संबंधित किताब मंगाते थे। भारत लौटने की आशा से उन्होंने छोटे नागपुर में अपने मिशन अनुभव और योजना लिखी। उनसे मुलाकात करने वाले उनके कार्यों के बारे सुनकर और जिस स्थिति में उन्होंने मिशन को छोड़ दिया था उससे जानकर हैरान रह जाते थे। वे मिशन में विरोध का सामना और मिशन सुपीरियर फादर ग्रोजा के बाद मिशन की स्थिति के बारे भी बतलाते थे। वे इससे बड़े दुख के साथ कई आत्माओं को खोना कहते थे। शुरू में वे कड़वाहट के साथ बात करते थे, किंतु बीमार कमरे के एकाकीपन में उनकी भावनाएं ठंडी पड़ गईं और कड़वाहट कम हो गई। 14 साल पहले नवशिष्य के रूप में जो उत्साह और दृढ़ता उन्होंने दिखाया था, उसी दृढ़ता से उन्होंने अपनी घायल भावना को चंगा करने के लिए अपनी अधीरता को संयम में रखा और अपनी इच्छा को ईश्वर की इच्छा के अनुरूप बनाया। अपनी आध्यात्मिकता में मजबूत बने रहने के लिए उन्होंने सामान्य उपाय अपनाए। उन्होंने कार्ड में या कागज के टुकड़ों में आध्यात्मिक कोटेशन लिखे। वे उन्हें उन स्थानों पर रखते थे जहां से वे हमेशा उन्हें देख सकते थे। ये कोटेशन उन्हें ईश्वर की याद करने और स्वभावपरी उद्देश्यों एवं प्रेरणाओं को प्राप्त करने में मदद करते थे। अपने शांत कमरे में फादर लेबन्स चिंतन किया करते थे कि क्या यह उनकी गलती तो नहीं थी जिसके लिए उन्हें वहां रहना पड़ रहा था, पर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता था कि उनकी बीमारी उनके अत्यधिक परिश्रम का परिणाम था। फादर लेबन्स ने अपनी डायरी में लिखा, संत इग्नासियस ने अपने अनुगामियों से बार बार आह्वान किया है कि वे अपने स्वास्थ्य को ईश्वर की सेवा में लगाएं। उसी तरह संत अलोइस गोंजागा के अनुसार, कोई भी व्यक्ति सिद्धि के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता जो अपने बेचैन पशु के समान शरीर को प्रहार से वश में करना नहीं जानता। इन बातों पर गौर करते हुए फादर लेबन्स ने आत्मग्लानि महसूस नहीं की, बल्कि अपने कार्यों के लिए सांत्वना और औचित्य महसूस किया। संत फ्रांसिस डी सेल्स के बारे पढ़कर उन्हें अपने उद्देश्य एवं कार्य के औचित्य पर यकीन हुआ। फादर लेबन्स ने चटनागपुर के लोगों के लिए अपने बहुमूल्य समय खोने पर कभी पछतावा नहीं किया, न ही अपने स्वास्थ्य बिगड़ने पर शिकायत की। उन्होंने भारत के लिए लिखा था, मैं नहीं जानता कि ईश्वर मुझे फिर भारत बुलाएंगे, उनकी पौत्र इच्छा पूरी हो। मैंने अपने स्वास्थ्य की कीमत पर काम किया है और शायद इसका मूल्य अपने जीवन से चुकाना पड़े। मैं इससे व्यक्त कर रहा हूँ, पर इसके लिए मुझे ग्लानी नहीं है। अलविदा। ईश्वर आप सभी को आशीष दे। उनकी चिट्ठियां और उनके कोटेशन उनकी आत्मा के संघर्ष को प्रकट करते हैं कि वे चीजों को सही सलामत ईश्वर के हाथों समर्पित करना चाहते थे और उन्हें उसी तरह देखना चाहते थे जिस तरह वे देखते हैं। इन सब के बीच उन्हें अब भी उम्मीद थी कि वे भले चंगे होकर मिशन में वापस लौटेंगे। श्रोता और रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत ईश सेवक फादर कॉन्स्टेंट लेबन्स एवं चटनागपुर मिशन की शुरुआत पर एक चर्चा सुन रहे थे। इस पर हम चर्चा आगे भी जारी रखेंगे और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।
चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका प्यार और परिवार। लेखिका है भवानी कौल। श्रोताओं, पारिवारिक जीवन का अस्तित्व प्रेम, त्याग, समर्पण, संतुष्टि और संस्कार पर निर्भर करता है। पति पत्नी का रिश्ता बेहद खूबसूरत और नाजुक होता है। यदि इस रिश्ते में प्यार और विश्वास की कमी हो जाती है तो रिश्ता तकलीफ देने लगता है। आज के भौतिकवादी युग में इस रिश्ते में व्यापक परिवर्तन आ रहा है। अब इसे आप पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव कहें, टीवी कल्चर कहें, या अपनी कमजोरी जो पारिवारिक रिश्ते में जहर घोल रहा है। माता पिता के बीच हुए अलगाव का असर सबसे ज्यादा उनके बच्चों पर ही होता है। बच्चों में माता पिता के प्रति खींच, गुस्सा और शक आने लगता है। उनमें असुरक्षा और आत्मविश्वास की कमी आ जाती है। वे अपने वैवाहिक जीवन के प्रति उदासीन हो जाते हैं या डर का भाव पैदा हो जाता है। अतः बच्चों के खातिर अगर परिवार को टूटने से बचाने का कोई चांस हो तो उसे जरूर आजमा लेना चाहिए। बेशक पति के विवाहेतर संबंध किसी भी पत्नी को स्वीकार नहीं हो सकते, लेकिन यदि पति को अपनी गलती का एहसास हो गया है और वह पत्नी को भरोसा दे रहा है कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा, तो पत्नी को ठंडे दिमाग से विचार कर उन्हें माफ कर देना चाहिए। उनका यह फैसला परिवार को बिखरने से बचा सकता है। याद रखें, जोड़ना हमेशा सुखदायक है और तोड़ना पीड़ादायक। गलती से सीखना ही जीवन का आधार है। आशा है आज की नाटिका टूटते परिवारों का मार्गदर्शन कर सके। तो लीजिए सुनते हैं भवानी कौल की लिखी नाटिका प्यार और परिवार।
हरी सुन सुन सुन, ठीक है तुम कॉफी और मैं चाय, ठीक है?
अच्छा मॉम, कॉफी मैं बनाती हूँ। मेरे हाथ की बनी कॉफी पीकर तो देखो आप।
क्या तुम कॉफी बनाओगी?
अरे सीख गई हूँ मॉम। देखो वक्त इंसान को सब कुछ सिखा देता है ना।
हाँ, यहाँ थी तब तो बड़े नखरे दिखाती थी तू।
हाँ छोड़ो भी मॉम, अरे बचपना था उस समय।
और अभी?
अरे अभी मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरे पास।
हाँ हाँ बाबा जानती हूँ, तेरे पास एक बड़ा बंगला है, एक बहुत बड़ी गाड़ी है, बैंक बैलेंस है और न्यूयॉर्क जैसे शहर में एक बड़ी कंपनी की CEO। और कुछ बोलो। बस तुम्हारे पास नहीं है तो कोई प्यार करने वाला नहीं है।
आहा, तुम भी ना मॉम, मुझे शादी नहीं करना, मुझे नहीं चाहिए किसी का स्टूपिड प्यार व्यार।
अरे मैं जानती हूँ कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो।
जानती हो तो फिर पूछो मत ना, तकलीफ होती है मॉम।
अच्छा चल मैं तुझे एक अच्छी कहानी सुनाती हूँ, और वो भी सच्ची कहानी, एकदम सच्ची, मेरी अपनी कहानी, किसी से नहीं कह पाई।
अच्छा तो फिर सुनाओ।
देख, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, बहुत चुलबुली, बिल्कुल खिलंदड़, दुनिया से बेखबर, हंसी ठट्ठा, ही बकबक, एकदम मस्त, दोस्तों के साथ आए दिन मस्ती करती थी, तभी मेरे जीवन में आया अमर।
हाँ हाँ, आपके जीवन में कोई आया? ओ।
हाय स्वरा, कैसी हो?
वेल, अच्छी हूँ। आज इतना चहक क्यों रहे हो?
इतनी मिन्नतों के बाद तुम जो मिली हो, तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। न जाने कितने मंदिरों में पूजा अर्चना की, मस्जिदों में जाकर तेरे नाम के धागे बांधे, गुरुद्वारे में मत्था टेका, गिरजाघर में हर रविवार मोमबत्ती जलाकर मदर मैरी से तुझे मांगता था। हो हो, पसीना आ गया तुझे पाने में।
अरे इतनी भागदौड़ करने की क्या जरूरत थी, मैं तो यूं ही मिल जाती।
कैसे?
अरे पहले ही दिन आई लव यू बोल देता।
पागल कुत्ते ने काटा है, जो तुम्हें कह देता आई लव यू, पलट कर सैंडल मारती ना तो नानी दादी याद आ जाती। वैसे भी कॉलेज की खुर्राट छात्र अध्यक्ष को कौन क्या बोलने की जरूरत करेगा, किसमें जरूरत है बताओ।
ओ, तो तुम्हारा मतलब है कि मैं इतनी डरावनी थी?
नहीं देखो, पर कहने के पहले आदमी डरता तो है ना, चाहता तो था पर सामने आते ही।
हाँ हाँ, तुम्हारी आंखों में देखकर मैं भाप गई थी कि तुम्हारे अंदर कुछ चल रहा है।
बताओ भला, सब कुछ जानते हुए भी बन रही थी है ना, देखकर भी अनदेखा कर दिया।
मैं भी चाहती थी कि तुम मेरे पास आओ, मुझसे कुछ कहो, पर पता नहीं।
अरे बाप रे, हिम्मत ही नहीं होती थी, कहां तुम अध्यक्ष महोदया और कहां मैं अदना सा सीधा साधा छात्र।
आहा, प्यार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, फिर तुमने वो चिट्ठी और फूल भिजवाने की हिम्मत कैसे कर ली।
ओहो, मेरा दोस्त जोगिंदर, उसने मजाक में लिखकर तुम तक पहुंचा दिया और उसे तुमने कबूल कर लिया, बहुत पापड़ बेले हैं तुम्हें पाने के लिए भाई।
और फिर हम दोनों का प्यार परवान चढ़ता गया।
और हाँ, तुमने एक ऐसे आदमी से शादी कर ली जो कमाता भी नहीं था। बंद करो अपनी लव स्टोरी मॉम। अच्छा, और फिर तुम्हारी जिंदगी में दूसरी औरत आ गई। मम्मी, तुम अब तक कैसे सहन करती रही हो?
बेटा, परिस्थिति के आगे एक दिन सबको झुकना पड़ता है। तुम छोटी थी, तुम्हें लेकर अकेली कहाँ जाती, और जमाना इतना खराब भी है। फिर मैं जिंदगी से समझौता करती चली गई।
फिर ये सब सहन कर महान औरत बन गई, यही कहना चाहती हो ना मॉम? तुम्हें तो ना अवार्ड मिलना चाहिए, और वो औरत तुम्हारी जगह लेकर बैठी है, और तुम हाथ पर हाथ धरे घर बैठी हो।
बेटा, अपनी करनी अपने साथ, भुगतना सबको यही है। सच कह रही हूँ, जब इंसान गलत करता है ना, तो भीतर से खुद बहुत डरा होता है, और अंदर ही अंदर वह टूटता चला जाता है। मैं मानती हूँ तुम्हारा पापा के गलत और बुरे कामों का तुझ पर बुरा असर हुआ है, जिस कारण तुम विवाह जैसे पवित्र और सुंदर बंधन में बंधना नहीं चाहती। पर सभी ऐसे नहीं होते हैं बेटा, सोच लो, खोना आसान है लेकिन पाना मुश्किल। वापस जाने से पहले अच्छे से पढ़ लेना ये चिट्ठी।
स्वरा, तुम जीत गई और मैं हार गया। तुम्हारी दृढ़ता और धैर्य और सहनशीलता के आगे मैं नतमस्तक हूं। मुझे माफ कर दो स्वरा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। तुम्हारा हक मुझ पर है और रहेगा। मैंने चिट्ठी पढ़ ली थी जो तुमने अंजलि के लिए लिखी थी। मैं भटक गया था, पर अब मैं वापस आ गया हूं। माफ कर दो मुझे।
वाह पापा वाह, ये कोई नई चाल तो नहीं है ना? बेचारी औरत तुम्हारे पीछे पागल हो रही है, और तुम उस शीतल के साथ रोमांस में लगे हो। अरे मन भर गया तो वापस चले आए, फिर इतने साल जो तुमने उससे छीने, क्या उसे लौटा सकोगे? अगर लौटा सकोगे ना पापा, तब मान जाऊंगी। उस औरत का दर्द तुम्हें दिखा नहीं? तुमने लव मैरिज किया था ना, फिर ऐसा क्यों किया? अरे हम पर क्या बीती, क्या इसे जानते हो तुम? तुम वापस चले जाओ, हमने जीना सीख लिया है। पापा अब वापस चले जाओ।
अंजलि, अंजलि बेटा, अंजलि, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, पर देखो, तुम दोनों हमेशा हमेशा मेरे दिल में थे, तभी तो मैं लौट आया।
झूठ, सब झूठ है, ये झूठ है।
नहीं बेटा, नहीं
बेटा, माफ कर दे बेटा।
तुम माफ कर पाओगी मम्मी?
शायद इनकी गलतियों को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, पर इन्हें भुला भी तो नहीं पाऊंगी, इसीलिए।
हाँ बेटा, हाँ बेटा, माफ कर दो।
बेटा, गाड़ी का दूसरा पहिया खराब हो जाता है ना, तो सबसे पहले उसे ठीक करवाते हैं, सुधारते हैं। जब खराब पहिया बिल्कुल नहीं सुधरता है, तब नया पहिया खरीदा जाता है।
माँ, तुम तो बहुत इमोशनल कर देती हो।
जो भी है बेटा, अंजलि, अब आखिरी बार माफ कर दो, माफ कर दो बेटा।
ठीक है माँ, सिर्फ तुम्हारी खातिर।
प्यार और परिवार। अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार हैं संतोष जोशी, समता बोरेकर, अमित सिंह और भवानी कौल। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।